समय हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग करता है कि अब इस बात को पार करने के लिए आपका प्रतिउत्तर कैसा रहेगा। कई बार हम नेगेटिवली प्रतिउत्तर देने लग जाते हैं, कई बार बड़ी समझदारी से सकारात्मक होकर के प्रतिउत्तर देने लगते हैं। उस प्रतिउत्तर के आधार से वो घटना अनुभव कराने का मोड़ लेती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि समय हमसे क्या प्रतिउत्तर मांगता है, तो समय हर घड़ी परिवर्तनशील है। जब समय परिवर्तनशील है तो वो हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। और उसके लिए ही कहा गया है कि इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय परिवर्तनशील है, समय हमसे एक परिवर्तन की ही मांग करता है। अगर समय को समझते हुए परिवर्तन को अपना लिया जाए तो समय हमें जीवन में आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर समय को समझा नहीं और उसके विपरीत दिशा में चलते रहे तो समय बड़ा कठोर हो जाता है और वह अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है। इसीलिए जब किसी को कोई बात कहते हैं सुधरने के लिए और वो नहीं सुधरता है तो लोग क्या कहते हैं, समय की थपेड़े खाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, तब सीखेगा। भावार्थ के समय अच्छे से अच्छे पाठ भी पढ़ा देते हैं कभी कभी जीवन में, लेकिन समय पाठ पढ़ाए और हम पढ़े उससे क्यों नहीं समझदार होकर पहले ही पढ़ ले। तो समय बीत जाने के बाद अगर होश भी आता है तो क्या फायदा, वो समय का पंछी तो उड़ गया। उसके बाद अगर सुधर भी गए तो भी कोई बात हासिल नहीं होती है। इसलिए कहा कि संसार के अंदर समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। तभी कहते परिवर्तन ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। लेकिन ये समय हमसे क्या चाहता है, ये कलयुग का अंतिम समय जब है तो ये अंतिम समय हमें क्या कहना चाहता है। समय हमेशा संकेत जरूर देता है, संकेत को समझना पड़ता है। तो ये कलयुग का अंतिम समय क्या संकेत दे रहा है और उस संकेत के हिसाब से हमें कौन सा परिवर्तन जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। तो इस समय के चक्र को देखते हैं, इसको कहा ही गया चक्र। चक्र माना जिसकी आदि और अंत नहीं होती है, चक्र माना जो नित्य चलता है। कुदरत के अंदर कई चक्र बने हुए हैं। दिन और रात का चक्र बना है जो नित्य चलता है, ऋतुओं का चक्र बना है जो नित्य चलता है, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र बना है वो भी नित्य चलता है। कुदरत के साइकिल को अगर देखेंगे, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आकर मिल जाता है, ये चक्र भी चलता रहता है। तो कुदरत का हर चक्र नित्य चलता है, कोई भी चक्र के लिए आदि और अंत नहीं है। दिन और रात के चक्र को देखो, कौन सी घड़ी को शुरुआत की घड़ी कहेंगे? रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, पता ही नहीं है कब ये चक्र शुरू हुआ था। इसीलिए चक्र माना अनादि, जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है। लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र के भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहते हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना ऐसी है कि उसने जिस तरह से सेटिंग किया हुआ है, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज, और उस ग्रेजुअल चेंज के साथ परिवर्तन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि बस यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ, नहीं। सो कंटिन्यूस चेंज एंड अ ग्रेजुअल चेंज। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर है जिसमें उसको साइकिल को कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटे, उसी में ही वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है एक साल, एक साल में वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। लेकिन जब ये 5000 साल सुनते हैं ना, तो कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न होते हैं? अरे शास्त्र में तो एक एक युग लाखों साल का लिखा है, आप 5000 साल का एक चक्र कह देते हैं, कैसे है, कैसे माने हम? क्या शास्त्र गलत है? 5000 साल का चक्र है, उसका कोई सबूत है? उन लोगों को मैं एक ही सवाल करती हूँ, लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है? है? कैसे मान लिया, कैसे मान लिया? 5000 का सबूत है हमारे पास, लाखों साल का कोई सबूत नहीं है। और बिना सबूत कैसे आपने स्वीकार कर लिया? वैसे देखा जाए तो कई चीजें ऐसी होती जिसका सबूत नहीं होता है। 24 घंटे का सबूत क्या है? जिसने भी ये दिन और रात का चक्र बनाया, 60 सेकंड की एक मिनट, 60 मिनट का एक घंटा, और इस तरह से दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता था, नहीं चलता था? 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे, चलता था कि नहीं चलता था? घंटे कम हो जाते थे, उतना ही ना, वो चक्र तो उतना ही रहना था। चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला था। लेकिन आज दिन तक हमने, भई ये 24 फिगर क्यों, 25 क्यों नहीं, ये सबूत मांगा, स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को उस अनुसार ढाल दिया। इसी तरह साल के चक्र को अगर देखा जाए, कितने दिन का है, 365 दिन का। किसने कहा, किसने कहा, विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और हमने स्वीकार कर लिया, कोई सबूत मांगा, और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, हाँ, कितने दिन होते हैं, 354। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में 354 दिन होते हैं। अब 354 सही या 365 सही, क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी जो बना है एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब सारे दुनिया को ना, जो माँ है प्लीज अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान रखे, तो हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस है जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस विकसित होता था? तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर है। अब सही कौन सा है, 365 सही, 354 सही? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज भी जब पूर्णमासी अमावस्या होती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है, ज्वारभाटा में इतना एक्यूरेट चलता है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी, इंग्लिश कैलेंडर को दी, और भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर लेके चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर मॉडर्न साइंस ने दिया इसलिए हिंदू कैलेंडर को भी फाड़ के फेंक दो, कहा गया? और ये भी नहीं कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। आज भी जो भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि की प्रेडिक्शन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होती है, एक्यूरेट होती है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं होती है। भावार्थ ये कि सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो कई चीजों का सबूत नहीं होता है, दुनिया ने स्वीकार किया इसलिए हमको स्वीकार करके चलना है, विदाउट एनी एक्सेप्टेंस, विदाउट एनी चॉइस। इसी तरह ये काल चक्र का भी ड्यूरेशन पीरियड है 5000 साल। अगर 24 घंटे को स्वीकार कर सकते हैं, 354 को स्वीकार कर सकते हैं, तो 5000 को क्यों नहीं कर सकते? देयर इज नो चॉइस। कई चीजों के लिए चॉइस नहीं होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट। वैसे सबूत है हमारे पास, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए? 5000 साल दिखाते हैं ना शास्त्रों में। अब शास्त्रों में 5000 साल का दिखाया कि महाभारत युद्ध हुए 5000 साल हुए, और महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना कि महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? चलता है? चलता है। तो महाभारत काल पुनः आ गया कि नहीं आया? महाभारत में जो पात्रों का वर्णन है, दुर्योधन जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं। दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में है, है? बहुत है। शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में मिलेंगे, दुशासन जैसे पात्र आज के समाज में मिलेंगे, है ना? शासन का दुरुपयोग, भावार्थी, और उसके बावजूद पुत्र मोह में अंधे ऐसे मां बाप भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो महाभारत के जितने पात्र दिखाए गए हैं वो तो आज समाज में मौजूद है। तो महाभारत काल पुनः आ गया ना, तो हो गया ना 5000 साल, हो गया ना। अब कौन सा सबूत चाहिए? इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाइबल में ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस के भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर का बहुत चला पिछले साल, है ना, भारत के अंदर टीवी पर मायन कैलेंडर, उन्होंने तो डेट भी दे दिया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी। कई लोग हमारे पास भी आते थे कि भैया क्या सचमुच दुनिया खत्म हो जाएंगी क्या? 5000 साल हो गया उनके हिसाब से, उनका कैलेंडर है ही 5000 साल का। पिछले साल ही मेरा मेक्सिको जाना हुआ था और मुझे ये पता नहीं था, लेकिन कुदरत का ही एक करिश्मा कहो कि मुझे उसी स्थान पर जाना हुआ जहां ये मायन खंडर है। और जब हम वहां गए देखने के लिए तो एक गाइड हमें सारा दिखा रहा था, वो मायन खंडर दिखा रहा था, और वो खुद भी मायन वंशज का था। तो जैसे जैसे वो दिखा रहा था मैंने उसको पूछा कि भाई आप लोग तो कहते हैं 21 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जो है नई सृष्टि आएगी, तो कैसे आप कहते हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाएंगी? तो उन्होंने कहा, वो भाई ने सुनाया कि हमने नहीं कहा है कि दुनिया खत्म हो जाएंगी। हमने कहा भाई हमारे इंडिया में तो इतना ज्यादा टीवी के ऊपर उसका ये आ रहा है कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ऐसे आपकी संस्कृति कहती है। तो कहा हमने ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को हमारा कैलेंडर पूरा हो रहा है। 5000 साल का जो कैलेंडर है वो पूरा हो रहा है और 22 दिसंबर से हमारा नया कैलेंडर शुरू होगा। लेकिन ये फिल्म बनाने वालों जो है ना, उन्होंने इतना उस चीज को हाईलाइट किया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। हमने ये नहीं कहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, हमने ये कहा हमारा कैलेंडर पूरा हो रहा है। हमारा कैलेंडर 5000 साल का है और वो कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म होगा और 22 दिसंबर से नया कैलेंडर आरंभ होने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ संसार के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया जरूर होगी। तो वो परिवर्तन तो देख ही रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, वो तो होता आया है, होता रहेगा। तो इसीलिए भावार्थ ये कि 5000 साल के चक्र का वर्णन हर धर्म शास्त्र में किया गया है, लाखों साल का एक एक युग, ये वर्णन किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। अब किसको स्वीकार करना है ये आपकी चॉइस है कि आपको लाखों साल का एक एक युग जो बिना सबूत के हैं उसको स्वीकार करना है, या 5000 साल का वर्णन जो हर धर्म शास्त्र में किया गया है उसको स्वीकार करना है ना। लेकिन तब कई बार हमें कई लोग पूछते हैं कि बहन जी, फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, उसको सही माने कि गलत माने? वो भी सही है। कैसे? जैसे दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है? 2013 साल से हम गिनती करते आए हैं, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र चलता था या नहीं चलता था? चलता ही था, हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ, चक्र तो चलता ही था। ठीक इसी प्रकार एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर मिलेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पत्थर तो मिलेंगे ना, क्योंकि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। एक काल चक्र उस पर 5000 साल का है। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है ना, उसको अगर देखा जाए तो उसको स्वास्तिका के रूप में दिखाया गया है। स्वास्तिक हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य पर स्वास्तिका लगाते हैं। स्वास्तिका शब्द को अलग करो, संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आया है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात कही गई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, हर घड़ी अच्छे से अच्छी है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी शुभ मुहूर्त का कार्य होगा ना, तो वहां क्या करते हैं, स्वास्तिका निकालते हैं। स्वास्तिका निकालने के बाद ऊपर एक कलश रखते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों स्वास्तिका निकाला? क्यों हर शुभ कार्य पर ये क्यों प्रथा है भारत के अंदर? स्वास्तिका निकालने का भाव है कि ये काल चक्र की हर घड़ी शुभ है। यानी कई लोग डाउट करते हैं ना, पता नहीं ये घड़ी शुभ है या नहीं है, तो ये स्वास्तिका निकाल दिया, माना ये घड़ी भी शुभ है, निश्चिंत हो जाओ। डोंट क्रिएट डाउट्स, इसलिए स्वास्तिका निकाला। उसके ऊपर कलश रखना, कलश किस चीज का होता है? कलश ज्ञान का होता है, यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर आप सोचेंगे तो ज्ञान युक्त बुद्धि यही कहती है कि ये घड़ी सदा शुभ है, और उस समय शुभ कर्म करो। ज्ञान युक्त बुद्धि, ये बुद्धि हमारी कलश है, और इस कलश में अगर ज्ञान यानी समझ है, और समझ के साथ आप कोई कार्य करते हो, ये समझ के साथ के जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के, ज्ञान क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड अपना बनाइए, और ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के आप कार्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो शुभ कर्म का फल कैसे होगा? हाँ, अच्छा ही होगा। तो नारियल को क्या कहते हैं? श्रीफल। नारियल को क्या कहते हैं? श्रीफल कहते हैं ना, कि ज्ञान युक्त बुद्धि से श्रेष्ठ कर्म करो, शुभ कर्म करो, तो उसका फल सदा श्रेष्ठ होगा। श्रीफल, फल कैसा होगा? श्री माना श्रेष्ठ, तो जिसका फल भी हमेशा श्रेष्ठ होगा। इसलिए हर शुभ कार्य पर ये प्रथा चलती है, हम करते आए, अर्थ किसी ने समझाया नहीं, न वो पंडित करने वाला, मंत्र उच्चारण करने वाला भी नहीं समझाता है, उसको आप पूछो कोई भी शुभ कार्य पर, जैसे पंडित वो निकालता है स्वास्तिक और उसके ऊपर कलश रख करके ऊपर नारियल रखता है, आप उसको पूछो ये क्यों करते हो, कहते आप नहीं समझेंगे, क्या कहेगा? खुद नहीं समझ रहा है तो क्या कहेगा? आप नहीं समझेंगे, चुप रहो, शांत रहो, और वो अपना मंत्र उच्चारण शुरू कर देगा, है ना? आप करके देखिएगा, कभी कभी करके देखिएगा, पंडितों से पूछिए भाई ये क्यों करते हैं, है ना भाई, ये विधि क्यों करते हैं? या अगर कलश निकाल दो, खाली नारियल रख दो तो नहीं चलेगा क्या? या कलश नारियल न रखो, या ये निशान नहीं निकालो स्वास्तिक का, तो नहीं चलेगा क्या? कहते करना पड़ता है। अरे भाई क्यों करना पड़ता है? आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, ये आपके समझ के बाहर की बातें हैं, है ना? आप उसको समझाइएगा, फिर आप उसको समझाइए कि हम समझ के आए हैं, इस चीज को क्यों करते हैं भारत के अंदर हर शुभ कार्य के समय, तो शायद उसकी भी बुद्धि खुल जाएगी, है ना? ज्ञान तो समझ बांटना ही चाहिए ना। अब ज्ञान मिला है आपको तो ये ज्ञान बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए? बांटना ही चाहिए। कहने का भावार्थ के स्वास्तिक हमें ये सिखाता है कि हर घड़ी सदा शुभ है। अब आप सोचेंगे, नहीं नहीं बहन जी, कोई कोई घड़ी तो ऐसी जीवन में आती है जो बहुत बुरी होती है, उसको अच्छा कैसे समझा जाए? वो राजा अकबर और बिरबल की बात मुझे याद आती है। एक बार सुनिए ना कहानी, उसकी उंगली कट जाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? कल ही सुनाई होंगी। भावार्थ ये है कि हर कार्य के अंदर कुछ न कुछ शुभ समाया हुआ है। जो घड़ी बीत रही है उसमें भी सदा शुभ है। कई बार कई लोग हमें कहते हैं, नहीं नहीं बहन जी, बहुत बुरा होता है, उस समय अच्छा कैसे समझा जाए? तो एक घटना मुझे याद आती है कि एक बार एक भाई थे, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे, तो हमें जब पता चला तो सोचा चलो मिलके आते हैं। हम जैसे ही गए मिलने के लिए, तो जाएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, ईश्वर को याद करने लिए कहेंगे। तो हमने उसको कहा कि भैया भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही उसको बहुत गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। है ना, बड़ा आश्चर्य लग रहा था क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाला, और उसके मुख से ऐसी बातें निकल रही थी, इसलिए आश्चर्य लग रहा था। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा हमें देख देख करके, क्यों नहीं हम धीरे धीरे बाहर निकल जाए। हम धीरे धीरे करके बाहर निकल गए तो उसकी पत्नी ने हमें देखा तो बाहर आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा भगवान में आस्था रखने वाला आज एक कार एक्सीडेंट क्या हुआ जो भगवान को गाली देने लगे? तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या बात है फिर? तो उसने सुनाया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता था, सभी जानते थे, बहुत अच्छा, कोई भी जरूरतमंद हो तो उसको वो मदद करता था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होगी, उसको उस गैदरिंग में जाना था और क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था इसलिए वहां उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होकर के नहीं जा सकता है, तो बार बार उसके सामने यही बात आती थी, अरे इतना बड़ा फंक्शन होगा, इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मैं जाता था, मेरा सम्मान होता था, अवार्ड मिलता था, मेरा फोटो निकलता था, वहां से जब वापस आता था यहां मुझे कैसे रिसीव करते थे, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए उससे ये घड़ी हजम नहीं हो रही थी कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बार बार यही कहता था, बहन जी मैंने कर्म किया और फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया, इसीलिए भगवान बुरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा हरेक को मदद किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब उसका जवाब तो हमारे पास नहीं था, हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों गाली देता है, कोई पूर्व जन्म का कर्म का हिसाब किताब भी तो भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है? उसको और गुस्सा आ गया कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले लेना था उसको, है? क्या कहते हैं उसको, आखिर हम तो वहां से निकल गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति अभी ठीक हो गई होगी। तो जैसे ही हम गुरुवार को बाबा का भोग लेकर के गए, प्रसाद लेकर गए, तो सुबह सुबह मैं क्लास के बाद में, तो और कोई नहीं था उनके पास में, वो और उसकी पत्नी दो ही थे सुबह में, तो जैसे ही हमें देखा तो कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि देखो बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आज मैं इसी फ्लाइट में होता था, है ना, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी खत्म हो जानी थी। लेकिन भगवान कितना अच्छा है, घात जो आनी थी वो तो आई लेकिन कितनी छोटी हो गई, है ना, खाली दो पैर फ्रैक्चर करके चली गई। घटना जो होनी थी वो तो होनी थी लेकिन वो होनी कितनी छोटी हो गई मेरे लिए। फिर और अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि शायद मैं वहां जाता था, अवार्ड मिलता भी था अगर मुझे, तो मुझे घमंड आ जाता था, भगवान नहीं चाहते थे मैं घमंड में आऊं। फिर कहने लगा, बहन जी आज मुझे लगता है भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, एक नया जीवन दान दे दिया, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या हो सकता है। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए, पता नहीं इसने भगवान को तो कितनी गाली दी होगी। जो आता था भगवान का नाम लेता था उसके साथ भी संबंध खराब कर देने जैसी स्थिति हो जाती थी। उस सिचुएशन को मुझे संभालने में इतना टेंशन हो जाता था कि एक एक को बाहर ले जाके मैं हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगती थी। वो बहन कहने लगी, बहन जी मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी। तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आता है? मैंने कहा ये तो गीता के सार में लिखा हुआ है और कईयों के घर में लटक रहा होगा, फिर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। इसीलिए हम सिचुएशन के समय दुखी हो जाते हैं। तो ज्ञान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है, खाली घरों में टांगने के लिए नहीं है। तो जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। आप निश्चिंत रहो, आप शुभ कर्म करते जाओ तो श्रेष्ठ फल मिलता ही जाएगा, है ना? यही गीता का सार है, यही शुभ कार्य का फल है जो पंडित लोग विधि कराते हैं लेकिन नहीं मालूम पड़ता है। ये है स्वास्थ्य का। तो ये चक्र कैसे चलता है अगर उसको देखा जाए तो उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका में चार भाग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। ये स्वास्तिका का निशान भी लगभग हर धर्म में मिलेगा आपको, हिंदू धर्म में मिलेगा, जैन धर्म में भी मिलेगा, क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस के रूप में मिलेगा, है ना? इस्लाम धर्म में भी मिलेगा, हर धर्म में स्वास्तिका जरूर निकालते हैं। और ये चारों भाग एक सरीखे दिखाए, यानी अगर 5000 साल का चक्र है उसको डिवाइड बाय 4 करो तो हर युग कितने साल का हो गया? 1250 साल का हो गया। तो हर युग 1250 साल का। इसकी शुरुआत कब हुई है तो मालूम नहीं क्योंकि ये चक्र है, लेकिन जैसे दिन और रात के चक्र की शुरुआत कब हुई है तो पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है, सत्यता का युग। नाम ही है जिसका सत्यता का समय, जहां स्वास्तिका का निशान इस पोजीशन में है। ये पोजीशन माना आशीर्वाद कि जहां सृष्टि का वो समय था, सत्यता का समय था, सूर्य वंश जिसको कहा जाता था, जहां हर आत्मा, जिस दुनिया में हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, भाग्य विधाता से जिन्होंने श्रेष्ठ भाग्य वरदान के रूप में प्राप्त किया हुआ था, है ना? उसी युग को जैसे कहा सूर्य वंश भी कहा जाता है कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती है, वैसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। उस युग के अंदर बाइबल में बहुत सुंदर बात एक लिखी गई है कि वो युग में कैसा था मनुष्य। तो कहा जाता है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुग में मनुष्य थे, तो परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में, यानी जैसे ईश्वर सर्व गुणों में संपन्न है तो अपनी कृति में बनाया था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? उस स्थिति में बनाया था, जिसके लिए भारत के अंदर भी कई धर्म शास्त्रों में बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा जाता है नर ऐसी करणी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात नर और नारी कलयुग में है, वही नर और नारी ऐसी करनी करे तो सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाए। जिसके लिए और भी बहुत सुंदर कहा हुआ है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को देर नहीं लगती है मनुष्य से देवता बनाने के लिए, है ना। गुरु नानक देव ने बहुत अच्छी बात कही, तो मानस से देवता किए करत न लागी वार। भावार्थ ये कि हर धर्म में ये बात आती है कि कैसे ये चक्र है और वही मनुष्य को देव स्वरूप में अपनी कृति में ईश्वर ने रचा या बनाया। जिस दुनिया के लिए कहा जाता कि वो दुनिया कैसी थी, सत्यता का युग जहां हर रीति से आशीर्वाद वरदान प्राप्त की हुई स्थिति में, जहां पवित्रता व्याप्त थी, शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, ऐसी अहिंसा थी, इतनी शांति थी। अगर शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे तो वहां की आत्माएं कैसी होती है। हर रीति से समृद्ध अवस्था में थी, सुख शांति व्याप्त थी, पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, कोई न कोई देव या देवी का रूप धारण करती है, और इस तरह से पूरी दैवी दुनिया थी। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो सतयुग के राज्य करता है, जो सूर्यवंशी है, इसलिए सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा जाता त्रेता युग। त्रेता यानी जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, या जिसको दूसरे शब्द में चंद्रवंश भी कहा जाता है, कि जैसे चंद्रमा की कला कम होने लगी, आत्माओं की कला भी कम होने लगी, स्वास्तिका का हाथ ऊपर से नीचे की ओर आता है राइट हैंड साइड पर ही, 16 कला से 2 कला कम हुई, 14 कला धारी हुए, पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है। इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम और श्री सीता का राज्य था? श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण कहा रामचंद्र। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो जाता है जिसको कहा जाता है त्रेता युग, जिसको आज भी लोगों ने राम राज्य के रूप में याद किया और स्वप्न देखा भारत के लिए कि पुनः राम राज्य हो जाए। कि चलो सतयुग जितनी संपूर्णता तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन त्रेता युग जैसी राम राज्य वाली स्थिति तो बना ही सकते हैं। जहां थोड़ी सी कमी हो भले कोई बात नहीं, लेकिन राम राज्य जैसा तो बनाए इस भारत को। लेकिन अफसोस, ये भी एक स्वप्न ही रह गया। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा, सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आया। लेकिन तब मनुष्य को प्रश्न होता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 2 कला कम हो गई, 16 कला से 14 कलाधारी बने। 16 कला कौन सी है? कोई गिनती की कला नहीं होती है, 1 कला 2 कला 3 कला ऐसे, लेकिन 16 फिगर परफेक्शन का है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं, 16 नहीं सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा क्या कहेंगे, 16 कला संपूर्ण है। तो इसी तरह सतयुग के अंदर जो आत्माएं थी 16 कला संपूर्ण थी। फिर धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कला कम होती है पूर्णमासी के बाद, 2 दिन के बाद, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उसके तेज में, लेकिन फिर भी 2 कला कम कहा जाता है। तो कोई कर्म करने वाली बात नहीं है, सृष्टि का एक नियम है, सृष्टि एक नियम में चलती है, एक लॉ जिसको कहा जाए लॉ ऑफ नेचर, उस लॉ में चलती है। और वो लॉ ऑफ नेचर क्या है? परिवर्तन। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नियम है। तो संपूर्णता की स्थिति में हर चीज सदा नहीं रह सकती। विज्ञान का भी सेकंड प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज, है ना। हर चीज पहले सुव्यवस्थित नहीं होती है, पुरानी अपने आप हो जाती है, पुरानी बनाई नहीं जाती है। खंडर बनाए नहीं जाते, खंडर बन जाते हैं। मकान नया बनाया जाता है। कुदरत के नियम के हिसाब से ऊपर से नीचे कोई भी चीज अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है, है ना। पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। ये लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रह सकती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी में कितना दिन रहता है? कितना दिन रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा चालू हो जाती है। तो चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सृष्टि भी इसी नियम में चल रही है। तो सोलह कला संपूर्ण वाली स्थिति जो थी, धीरे 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 कला कम होने लगती है। त्रेता युग तक आए, त्रेता युग से फिर द्वापर युग तक आए, तीसरा भाग आया। और तीसरे भाग में स्वास्तिका का हाथ जो है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर टर्न हो जाता है। राइट हैंड को कहा गया राइटियसनेस, हर शुभ कार्य राइट हैंड से किया जाता है। लेफ्ट हैंड को कहा जाता है अनराइटियसनेस। तो जहां से द्वापुर, सत्यता माना एकता, द्वा माना दो, जहां से दो पुर आरंभ हुए, सत्य के साथ ग्रेजुअली असत्य मिक्स होने लगा। और जैसे ही असत्य मिक्स होने लगता है, मतभेद होते हैं, और मतभेद के कारण कलह क्लेश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते, क्योंकि दुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर वो दोहा याद आता है कबीर जी का, कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए, है ना। यानी जब सत्ययुग और त्रेता युग था, स्वयं ही भगवान भगवती के स्वरूप में थे, तो भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना सुख था, सत्यता का समय था, तो भगवान को याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया संसार में। अगर सुख में याद करते थे तो दुख काहे को होता था। इसीलिए द्वापर में भगवान से मांगना आरंभ किया। तो स्वास्तिका का पोजीशन क्या हो गया? मांगने वाला पोजीशन। हे प्रभु, शांति दो, सुख दो, समृद्धि दो, ये दो, वो दो। रोज मंदिर में जाएंगे, व्यक्ति कुछ न कुछ मांगते ही रहता है। हे प्रभु, मन की शांति दो। हे प्रभु, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे दो। हे प्रभु, सद्बुद्धि दो। हे प्रभु, ये दो। हे प्रभु, वो दो, है ना। मांगना चालू किया, क्योंकि दुख का अनुभव किया। अब दुख का अनुभव जैसे होने लगा, ईश्वर को याद करने की सोची, लेकिन ईश्वर का परिचय तो है नहीं, तो किसको ईश्वर माने। तो जो देवी देवताएं होकर के गए थे, उसी को ही परमात्मा मान करके मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। जैसे आज के युग के अंदर कई संतों का भी मंदिर बनता है। अब पूछो, वो तो संत थे, गृहस्थी थे, हमारे जैसे थे, फिर उनका मंदिर क्यों बनाया? तो क्या कहते लोग, हा? क्यों बनाते हैं संतों का मंदिर, क्यों बनाते? तो कहते, हमसे तो श्रेष्ठ थे ना, कम से कम उनसे तो प्रेरणा ले, इसीलिए वो पूजनीय है हमारे लिए, इसलिए उसका मंदिर बना करके पूजा करते हैं, पूजनीय है। तो जो द्वापर युग में आत्माएं थी उनके लिए पूजनीय कौन थे? वही सत्ययुग और त्रेता युग के देवी देवताएं, क्योंकि भगवान का तो परिचय था नहीं, तो उनको ही भगवान मान करके उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, श्री राम सीता के मंदिर बनाए, राधे कृष्ण का मंदिर बनाए और पूजा करना आरंभ किया और भगवान से मांगने लगे। जो देवी देवताएं हो गए थे, जो पूज्य स्वरूप में थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते जब द्वापर युग में आए तो अपने ही वो पूज्य स्वरूप की मूर्तियों की पूजा करने लगे। जो श्रेष्ठ स्थिति थी, आत्म स्थिति में स्थित थे, वे देह अभिमान के वश हुए, अहंकार के वश हुए। और इसी युग में शास्त्रों का निर्माण हुआ, इसी युग में मंदिर बनाए, इसी युग में पूजा के विधि विधान बने और कई प्रकार की अंधश्रद्धाएं भी डेवलप हुई इसी युग में, क्योंकि ईश्वर का सत्य परिचय नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान चक्षु से विहीन सूरदास हो गए। सूरदास हो गए तो फिर जैसे कल हमने देखा कि कितने सारे ओपिनियन में आ गए, किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया, उस रीति से पूजा आरंभ कर दी, है ना? किसी ने 24 अवतार बताया, किसी ने 10 अवतार बता दिया, किसी ने कितने अवतार बता दिए, किसी ने कण कण में कह दिए, माना सत्य क्या है ये मालूम ही नहीं रहा। दूसरे शब्द में कहे तो जैसे जैसे भक्ति मार्ग विस्तार को प्राप्त होने लगा तो भारत के अंदर तो भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, लेकिन भारत से बाहर विश्व की हालत कैसी थी? तो विश्व के अंदर कुछ महान आत्माओं का जन्म हुआ और वहां की समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किया, इसीलिए वो धर्म बन गए। सबसे पहले इब्राहिम आए जिसने इस्लाम धर्म को रचा, महात्मा बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म को रचा और क्राइस्ट आए जिसने क्रिश्चियन धर्म को रचा। इब्राहिम मिडल ईस्ट में गए, महात्मा बुद्ध फार ईस्ट में गए और क्राइस्ट वेस्ट में गए। तो हर धर्म के असली सिद्धांत देखो एक ही होगा, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, हर धर्म के ओरिजिनल सिद्धांत एक ही है। लेकिन जहां पर ये आत्माएं गए थे वहां की समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो प्रचार किए वो प्रचार अलग अलग थे। तो भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं हैं और भारत में तो हर स्टेट में कोई न कोई महान आत्मा ने जन्म लिया। अब जहां इब्राहिम गए थे वहां की समाज की व्यवस्था कैसी थी? तो उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में लिखे हैं, लेकिन अफसोस उस धर्म के लोगों ने उसको समझा नहीं। इसी तरह जहां पर महात्मा बुद्ध गए थे वहां की समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उन्होंने दो बातों को देखा जिस पर अपने प्रचार आरंभ किए। पहली बात देखें कि उस समाज के अंदर दया नाम की चीज नहीं है और मनुष्य के कर्म भ्रष्ट हो रहे, तो उन्होंने प्रचार में क्या कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है, ये उनका संदेश रहा। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं और इसीलिए कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं लोग, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं लोग, जो दुनिया में कोई नहीं खाते ना वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता, कुछ समय पहले मेरा हांगकांग चाइना के तरफ जाना हुआ था, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, आजकल तो हर शहर में कोई ऐसा स्थान बन जाता है जहां खास लोग खाने के लिए ही जाते हैं शाम के समय, तो हांगकांग की भी चौपाटी बहुत मशहूर है। वहां भी इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं और लोग खास वहां खाने के लिए ही जाते हैं। मेरा एक कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, मकाओ आइलैंड पर मेरा कार्यक्रम था, तो हमको गाड़ी पार्क करके बोट लेनी थी। तो जब बोट लेने के लिए गाड़ी पार्क करके उस चौपाटी से गुजरना पड़ा हमको, 10 मिनट हम वहां से गुजरे, जो दोनों तरफ के स्टॉल लगे हुए थे और वहां का नजारा जो देखा मुझे कभी भूलता नहीं है। कहां देखा तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे थे, है ना, और वो बड़े तवे पर रख के उसको फ्राई करके लोग बड़े चाव से खा रहे थे। कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी पकाई जा रही थी, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी, है ना, कहां देखा तो बड़ी बड़े खेखड़े तले जा रहे थे, कहां देखा तो कुत्ते का घोष्ट उबर रहा था, है ना। वहां मुझे पता चला जैसे भारत में भाई रास्ते में निकलो तो इतने सारे कुत्ते आपको मिलेंगे, हांगकांग चाइना में आपको रास्ते पर एक कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, एक भी कुत्ता नहीं देखने को मिलेगा, ना वहां किसी के घर में कुत्ता पालना अलाउड है। भाई जितने भी कुत्ते ये देखते खा जाते हैं लोग, इसलिए वहां कुत्ता दिखाई नहीं देता है, है ना, कुत्ते का गोश्त उबाल के खा जाते हैं और बड़े महंगे हो गए हैं ये गोश्त भी उनका, क्योंकि मिलता ही नहीं है एक तो कुत्ता देखने को, और मैं समझती हूँ सारे कुत्ते इसीलिए भारत में ही जन्म ले रहे, इसलिए गली गली में इतने सारे कुत्ते देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां जन्म देने वाला उनका कोई है ही नहीं, तो सारे यहीं जन्म देते हैं, है ना। तो भावार्थ ये कि वहां पर आपको कोई जानवर देखने को रास्ते में मिलेंगे नहीं, यहां तो वो खिसकोली देखते हैं, स्क्विरल देखते हैं, वहां पर कोई ऐसी जानवर आपको रास्ते में दिखने को नहीं मिलेंगे। भावार्थ ये है कि जो कोई नहीं खाते हैं दुनिया में ये लोग खाते हैं। तब मुझे महसूस हुआ जब मैं वहां से गुजर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस ये लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। आजकल तो आप ताइवान अगर चले जाओ तो इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं या आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर आदि में कि मनुष्य के बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में, और मनुष्य आज ऐसा हैवान बनता जा रहा है कि अपने बच्चों को खाने में हिचकिचाता नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करते यूनाइटेड नेशंस, इन बच्चों के ह्यूमन राइट्स कहां गए, कोई देश आवाज नहीं उठा रहा है, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। अब जानवर मिलना बंद हो गए वहां पर तो मनुष्य के बच्चे को खाने लग गए, कैसी हैवानियत है ये, है ना। ये असुर नहीं तो क्या है, असुर कोई दो सिंह वाले बड़े बड़े दांत वाले थोड़ी थे, यही तो असुर है कि नहीं है। ये शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं भाई असुर थे, कौन से असुर थे, वो असुर प्रतीकात्मक है, लेकिन वास्तव में कलयुग के अंदर यही तो असुर बन गए हैं, यही असुर है। इसलिए कहा कि अफसोस उस धर्म के लोगों ने उस संदेश को समझा नहीं। और आप देखेंगे गली गली में आपको महात्मा बुद्ध का मंदिर मिलेगा, हर गली में, हांगकांग के अंदर आपको हर गली में 2 मंदिर 3 मंदिर मिलेंगे। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते, है ना, जैसे भारत वाले गीता को बहुत मानते, गीता को बहुत मानते, गीता की नहीं मानते, गीता की रोज पूजा करेंगे, अपने पास में भी हर गली में कितने मंदिर मिलेंगे, लेकिन अपने जीवन को ऐसे बनाए ये प्रेरणा नहीं लेते, ऐसा दिव्य बनाए। इसी तरह जहां क्राइस्ट चले गए थे वहां कैसी स्थिति थी, वहां के समाज में उसने भी दो बातें देखी और उन्हीं दो बातों पर उसके प्रचार रहे। वहां उसने देखा कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त हो रहा है, झूठ बोल रहा है, और दूसरा उसने देखा कि मनुष्य मनुष्य से नफरत करने लगा है। तब उसने प्रचार किया प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। ये दो वैल्यूज को ईश्वर के बराबर बता दी, इतना महत्व दिया। लेकिन अफसोस, प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया, उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया, है ना? कितना नफरतपूर्ण व्यवहार किया उसके साथ में। जिंदा व्यक्ति को क्रॉस पर चढ़ाना यानी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसीलिए जहां पर भी दुनिया में ये वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए, गए थे व्यापार के लिए, भारत में भी आए थे व्यापार के लिए, लेकिन उस देश में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, राजाओं को प्रजाओं को लड़ाया, झूठ के बीज बोए, नफरत के बीज बोए और पूरा देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, राज्य देने वक्त क्या किया, वापस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देश के दो टुकड़े कर दिए, नफरत के बीज बोए, भाई भाई लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं, किस लिए लड़ रहा है पता ही नहीं है, क्योंकि कारण हो तब तो निवारण हो सके। और इसीलिए किसी बात में समाधान होता ही नहीं है, क्योंकि नफरत के बीज कितने गहरे बोए गए हैं समझ सकते हैं। इसलिए कहा अफसोस उस धर्म पिता के संदेश को समझाने। और इस तरह धीरे धीरे चौथा युग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेती, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति में हर बात पहुंच गई। जब अति हो जाती है तो अति निशानी है अंत की, और अंत निशानी है नई आद की, क्योंकि ये चक्र है, उसको घूमना ही है, ये ठहर नहीं सकता है, है ना? इसी कलयुग को दूसरे शब्द में देखें तो रावण राज्य कह सकते हैं। जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, जहां रावण राज्य था वहां राम राज्य नहीं था। रावण राज्य कोई त्रेता युग में नहीं था, वहां तो अयोध्या थी, अयोध्या जहां युद्ध का नामो निशान नहीं था। रावण राज्य तो अब है, और अब है इसीलिए राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा गया, क्योंकि रावण के लिए कहा जाता है कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास, विद्वान था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, उसने तपस्या के बल से दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए थे। इसलिए रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। शिव भक्त था, खूब भक्ति करता था, और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं मिलेगा, पूरी सोने की लंका थी। यानी जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। अर्थ, पैसा, धन, बल, शक्ति, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। और फिर भी उसका सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? दो बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी। कौन सी दो बातों की कमजोरी आ गई थी? अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई थी, अनैतिकता। ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया भी रावण राज्य ही है, क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं है। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, आज इतना कंप्यूटर साइंस उसका बढ़ गया है ना, और कितने सुख सुविधा के साधन बना दिए उसने, हवा में उड़ने लगा है रावण की तरह, समुद्र के नीचे तैरने लगा है, आकाश मार्ग से जा सकता है, आ सकता है। ये मनुष्य की बुद्धि का ही तो कमाल है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। आज मनुष्य के पास भी मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र बना दिए उसने। मिसाइल का नाम क्या है? यही है ना, ब्रह्मास्त्र। तो मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा भक्ति भी करने वाला कोई नहीं। खूब भक्ति कर रहा है ना, कहा ना गली गली में मंदिर हो गए, किस किस की पूजा करने लगा है, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करने जाता है। तो मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं। और रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। पूरी सोने की लंका चमक रही होती है ना, फ्लाइट से आप देखो रात्रि के समय में कोई भी शहर को तो कैसा दिखता है, ग्लैमर का पंप एंड शो जिसको कहा जाए, तो सोने की नगरी चमक रही होती है। तो मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं है ना, कितना कमा रहा है आज इंसान, कितना पैकेज, सबसे पहला नौकरी पर जाएगा पैकेज कितने का होगा है ना, और वो पैकेज भी लाखों में करोड़ों में हो गया है। तो मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं है। चारों ही चीज रावण के पास थी, आज मनुष्य के पास है, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति। लेकिन आज मनुष्य भी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दो कमजोरी आ गई है। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर और चरित्र भ्रष्टता, अनैतिकता। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो अनैतिकता आ गई, इसीलिए अपने ही सर्वनाश की ओर। तो ये रावण राज्य नहीं तो क्या है? तो जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। इसीलिए परमात्मा राम को ही आना पड़ता है। ये मनुष्य के घमंड को नष्ट करना, इसीलिए देखो हर साल रावण का दशहरे पर भूत जलाते हैं। भूत कभी मुर्दों का नहीं जलाया जाता है, भूत कभी मुर्दों का नहीं जलाया जाता है, जो जिंदा होता है ना उसका ही भूत जलाते हैं। तो रावण जिंदा है ना, रावण जिंदा है या नहीं है? है कि नहीं है? क्योंकि भूत मुर्दों का तो जलाया ही नहीं जाता है, भूत तो जिंदा लोगों का जलाया जाता है। तो रावण जिंदा है और हर साल बढ़ता जाता है, इसलिए हर साल कितना फीट बनाते जाते हैं, क्योंकि हर साल हरेक के दिमाग का रावण बढ़ता ही जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, पहले 50 साल पहले भ्रष्टाचार कितना था, और आज लूट लो देश को, इसी मनोवृत्ति में है सब, लूट लो बस, जो भी हाथ लगा, पता नहीं आगे का 5 साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितना अभी हड़प सकते हड़प लो। तो यही तो भावना थी रावण की, है ना? इसीलिए कहते रावण ने अपनी शक्ति से प्रकृति के 5 तत्व को अपने महल में अपने 4 पाई के साथ बांध के रखे थे। रावण के महल में इंद्र पानी भरता था, अग्नि उसके लिए खाना पकाता था, वायु उसको पंखा हिलाता था, तो आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से पांचों तत्व को अपने घर में बांध के रखे है, नॉब्स में। गैस चालू करो तो अग्नि देवता प्रकट हो जाता है, खाना पकाना शुरू करता है। आजकल तो ऐसे है, लाइटर भी नहीं चाहिए, ऐसे ही नॉब खोला चालू हो गया है ना। और इंद्र पानी भर रहा है, नलका खोला, इंद्र हाजिर सेवा में है ना। और वायु देवता एसी चालू किया तो हवा देने लगता है। तो ये रावण राज्य नहीं तो क्या है? अभी कौन सा सबूत चाहिए कि रावण राज्य है या नहीं है, बताओ? अभी कोई सबूत चाहिए? हाँ, तो क्या कहेंगे? इसीलिए राम राज्य का सपना देखा लोगों ने कि जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, है ना। धर्म का उपकार था, जहां धर्म का उपकार था। और आज ये रावण राज्य है जहां धर्म का उपकार नहीं रहा। इसलिए कहा रावण मरा नहीं है, जिंदा है, हर एक के घर में बैठा हुआ है, बैठा है ना, है ना। इसीलिए कहा जाता है जब कलयुग घुसा ना तो परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था, तो रात को 12 बजे ही कलयुग ने दस्तकत दी। तो परीक्षित राजा ने पूछा कौन, तो कहा मैं कलयुग हूं। तो क्या चाहते हो? तो कहा मेरा आने का समय हो गया है, मुझे आपके राज्य में स्थान चाहिए। कहा नहीं, मैं अपने राज्य में तो नहीं दूंगा, मेरा सारा तुम व्यवस्था ही खराब कर देगा, जो सुखी है राजा प्रजा सब वो तुम बिगाड़ देगा, मैं नहीं दूंगा तुझे स्थान। तो नहीं बोले, देना ही पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो मैं छीन के ले लूंगा, इसलिए आप समझदारी से मुझे स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा सोच में लगा, कहा ठीक है तुझे चार स्थान देता हूं। कहा कौन सा स्थान? तो कहा जुए खाने में, जुए खाने से बाहर नहीं निकलना तू। दूसरा कहा वैश्यालयों में, वहां से बाहर नहीं निकलना। तीसरा कहा शराब खानों में। ये तीन स्थान तेरे को दिए। कलयुग ने कहा नहीं, मुझे एक और स्थान भी चाहिए। कहा यहां से तुम बाहर नहीं निकलना लेकिन। कहा ठीक है, लेकिन और एक स्थान और दे दो। तो कहा कौन सा स्थान चाहिए? तो कलयुग ने कहा सुवर्ण में दे दो। तो परीक्षित राजा ने कहा सुवर्ण, सोने में, सोना चांदी होता है ना, सुवर्ण में। तो उसने कहा सुवर्ण में स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा ने सोचा ठीक है सुवर्ण में दे देता हूं। तो सुवर्ण में दे दिया। अब परीक्षित राजा ने ताज पहना हुआ था सोने का, सुवर्ण में स्थान दिया तो सीधा वहां जाके बैठ गया। आज कलयुग कहां बैठा हुआ है? यही बैठा हुआ है। वहां से उसने दिमाग घुमाना चालू किया और इसीलिए घर घर में कलह क्लेश कर दिया उसने, है ना। घर घर में कलह क्लेश किसको लेकर के होता है? जमीन जायदाद को लेकर के ही, मन धन संपत्ति को लेकर के ही तो होता है ना। और जुआ खाना, शराब खाना वैशालय में तो है ही है, कलयुग बैठा हुआ है। लेकिन वहां से अभी कहां निकल के आ गया? घरों में आ गया। ये तीनों अभी घरों में शराब खाना होता है। आज विदेश में जाओ या भारत में भी कई बड़े शहरों में जाओ तो शराब खाना घर के एक कोने में जरूर होगा, होता है कि नहीं? बियर बार घर में ही खोल दिया। तो वहां से सीमित तो था लेकिन वहां से सीधा घर में आ गया। ये कलयुग है, इसीलिए इसको रावण राज्य कहा। तो है रावण, तो जहां त्रेता युग में रावण था, त्रेता युग में रावण नहीं था, अभी है रावण राज्य। इसीलिए परमात्मा ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब ऐसी धर्म ग्लानी का समय आ जाता है तब मुझे भी इस संसार में आना ही पड़ता है, जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस कर रहा है, हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी है, हर प्रकार की अति धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट मनुष्य बन चुका है, जहां मनुष्य आत्मा पांच गुलाम विकारों का खाली गुलाम नहीं बना है लेकिन अपनी कर्मेंद्रिय का गुलाम बन चुका है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, उसकी शक्लें तो देखो कैसी विकृत हो गई है। और ऐसी विकृत शक्लें जब हो जाती है तब परमात्मा को भी इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय न होने कारण मनुष्य आत्माएं कहां ढूंढ रही है परमात्मा को, कहां ढूंढ रही है, कहां देखो तो अग्नि की पूजा कर रहे हैं, कहां देखो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, कहां देखो नदियों की पूजा कर रहे हैं, कहां देखो जानवरों की पूजा कर, किस किस की पूजा करने लग गया। ऐसा धर्म भ्रष्ट जब हो जाता है तब भगवान को भी अपने वायदे अनुसार इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो कलयुग बच्चा है, 4,32,000 साल का कलयुग अभी 40,000 साल पड़े हैं। अब सोचने की बात है, 40,000 साल अगर पड़े हो और आज कलयुग की ये दशा हो, 40,000 तो छोड़ो, 40 साल भी चलने जैसी स्थिति है कलयुग की, क्या कहेंगे है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है ना, और इसीलिए वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत जो क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। दूसरा भी एक गीत याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहाँ क्या नहीं होगा, है ना। और वो सारी निशानियां बताई है कि कलयुग की निशानियां क्या होगी, और वो सारी निशानी इस समय प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। तो अभी भी 40,000 साल पड़े हैं, कितनी अंधश्रद्धा कि विवेक से हम देख नहीं पाते हैं कि दुनिया की हालत को देखते हुए क्या 40,000 साल चलने जैसी स्थिति है इस दुनिया की। आज जिस तरह से वैज्ञानिक लोग चिंतित है कि जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है, हर साल अभी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कॉन्फ्रेंस होती जा रही है, और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई दोहा के अंदर इस साल में, सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां इकट्ठे हुए थे, ब्रह्मा कुमारी भी गए थे, तो वहां के साइंटिस्टों ने रिसर्च के हिसाब से यही बताया कि ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है खाली 2 डिग्री बढ़ जाए, 2 डिग्री, खाली 2 डिग्री, तो ये संसार का किस तरह महाविनाश होगा उसकी कल्पना मनुष्य को नहीं है। इतनी अज्ञानता में सोए हुए हैं कि खाली 2 डिग्री बढ़े अगर, अब 2 डिग्री बढ़ने में कितना समय लगेगा, 40,000 साल लगेगा, नहीं 40,000 साल कभी, ऑक्सीजन का सोर्स ही खत्म हो रहा है ना, वृक्ष कटते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन ही नहीं है, रात्रि के समय में मात्र 2% ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए अस्थमा अटैक हार्ट अटैक रात में ही आते हैं, है ना, 2 बजे के बाद हार्ट अटैक आता है, साइलेंट अटैक अस्थमा अटैक, ऑक्सीजन सबसे कम उसी समय में होता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 4 बजे के बीच में सबसे कम ऑक्सीजन, है ना। तो इसीलिए और जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति होने लगी है, बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, सुनामी लहरें उठ रही है, ये सब असंतुलन बता रहा है कि महाविनाश की ओर, एक महान परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो मिसाइल्स बनाए हैं रखने के लिए तो नहीं बनाए ना, उसका भी प्रयोग तो होना है कि नहीं होना है। अब ये सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल है, अब एक व्यक्ति जो बैठा है देख रहा है कहीं से आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, अब उसको अगर सिज़ोफ्रेनिक अटैक आए और घर में अगर झगड़ा हो या टेंशन हो और वो जाए काम पर, तो क्या करेगा, दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, कितनी देर लगेगी। इसीलिए कहा जाता मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भगवान अभी डिस्पोज करना चाहते हैं दुनिया को, अब ये दुनिया को चलना नहीं है ज्यादा, सतयुग आना ही है। और जब सतयुग आना ही है तो उसके आसार दिखाई देने लगे हैं, और इसीलिए परमात्मा ज्ञान चक्षु को खोलते हैं, और जब ज्ञान चक्षु खोलो तो सब स्पष्ट नजर आता है, हर चीज स्पष्ट नजर आने लगे। ऐसे समय पर ही भगवान ने जो वायदा दिया है कि इस अधर्म के समय पर मैं संसार में भी भारत में भी एक साधारण तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के यही कहता हूँ, अब चलो घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी पर है हम सभी। और इसीलिए अब प्रकृति सफाई का काम जरूर आरंभ करेगी, करना शुरू तो कर ही दिया है, लेकिन प्रकृति अपना कार्य शुरू कर रही है। और इस तरह से देखा जाए कि जो परमात्मा ने बातें कही, कि परमात्मा भी यदि संसार में आते तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, कौन सी दो बातें कहते हैं, इस समय को देखते हुए कि आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने थोड़ी लिया है। जब गीता में भगवान ने कह दिया काम क्रोध नरक के द्वार है ना, महाशत्रु है, इसलिए कहा गीता को मानते, गीता की नहीं मानते, गीता को मानते हैं ना, गीता की मानते हैं, नहीं मानते है। तो परमात्मा आकर के अब समय का इशारा देते हुए अब यही कहते हैं, आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो, और तब नई दुनिया जो आने वाली है, सतयुगी नई दुनिया, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार, परमात्मा को। तो परमात्मा आकर के अभी यही शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो परमात्मा की मानेंगे, परमात्मा की मानेंगे या परमात्मा को मानेंगे, हाँ परमात्मा को मानेंगे, परमात्मा की मानेंगे, हाँ सबको कराना चाहिए।